ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे दशम स्कंध, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है, दामोदर मास, दशम स्कंध और अध्याय 9। अध्याय का नाम है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्लोक संख्या 15। तद्दाम बंध बद्यमानस्य तद्दाम बंध बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागच स्वार्भकस्य कृतागतः द्वै अंगुलोनम अभुत्तेना द्वै अंगुलोनम अभुत्तेना संददे अन्यच्च गोपिका संददे अन्यच्च गोपिका तद्दाम बद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलोनम अभुत्तेन संददे अन्यच्च गोपिका तद्दाम बद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागतः द्वयंगुलोनम अभुत्तेन संददे अन्यच्च गोपिका। माता जी, शब्दार्थ तद्दामा बांधने की वह रस्सी, बद्यमानस्य माता यशोदा द्वारा बांधा जाने वाला, स्वार्भकस्य अपने पुत्र का, कृत आगसह अपराध करने वाले, द्वि अंगुल दो अंगुल, ऊनम छोटी कम, अभूत हो गई, तेना उस रस्सी से, संददे जोड़ दिया, अन्यतच दूसरी रस्सी, गोपिका माता यशोदा ने। अनुवाद तथा तात्पर्य ए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। तात्पर्य, कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पूतना, शकटासुर तथा तृणावर्त का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखला देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद एक दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत तक वे असफल ही रहीं। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गई। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवन मुख ही जीवा दो स्वयमेव सुरद्यय। जो भक्त सेवा में आगे बढ़ता है क्यों तो वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जीवादो, यह सेवा जीव से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे द्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुख ही जीवादो स्वयमेव सुरातत्य। होम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो कुछ भक्तों ने आज बोला कि क्लास हिंदी में करिए, आज थोड़ा क्लास हिंदी में करते अद्भुत सारी प्रभु हिंदी समझ जाएंगे थोड़ा। तो अभी हम दामोदर लीला सुनते आ रहे हैं और कर भी हमने सुना तमाल कृष्ण प्रभु से। तो अब यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और अब बांधने का काम चालू हुआ। तो आप देखेंगे शुरू में इस अध्याय के जब चालू हुआ तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हरी ही शब्द यूज करते हैं भगवान के लिए, हरी है ना, और यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। व्यक्ति वही है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वहां पे दिखा रहे हैं कि माता यशोदा क्या कार्य करने जा रही है, किसको बांधने जा रही है, जिसका कोई अंदर नहीं कुछ बाहर नहीं, जिसका कोई और शोर नहीं है, उसको दो शोर की रस्सी में बांधने जा रही है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हरि को बांधने जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोलने हैं, जब माता यशोदा उत्पाती बालक को, अब यहाँ माता का भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यशोदा माता के लिए तो कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो उनके लिए वही छोटे से बालक हैं जो नटखट हैं और जिसको यशोदा बोलती है कि तुम बंदर जैसा है। तो भी भगवान, तो यहाँ पे वो भाव दिखा रही हैं, कृत आगस्य, पहले तो बोल रहे स्व अर्भकस्य, मतलब अपने पुत्र को, कृत आगस्य जिसने अपराध किया है, क्या अपराध किया है, जिस मटकी ने बहुत सालों से बहुत महीनों से घी पिया था उसको फोड़ दिया। देखिए मटकी जो होती है, नया मटकी जैसे आप लाएंगे, आजकल तो कोई लाता नहीं है, आजकल डायरेक्ट फिल्टर लगा देते हैं और पानी पी लेते हैं। तो मटकी अगर लाएंगे नया मटकी तो वो सोखता है क्योंकि मिट्टी है। अब ये मटकी ने कितना मक्खन घी सोखा होगा, पिया होगा, तो और नुकसान हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कृत आगस्त्य जिसने अपराध किया और क्या करने जा रही है, उसको बांधने जा रही है। लेकिन बांधने की इस प्रक्रिया में माता हैरान हो रही है। अभी देखिए लीला कब शुरू हुई थी, सवेरे। इसमें बताया गया है कि माता सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले उठ के नहा धो के तैयार होके और मक्खन बनाने का प्रोसेस चालू किया। कृष्ण उठे नहीं थे, अब ये कृष्ण उठ गए, यहाँ पे लीला हो गई। और दौड़ते दौड़ते कृष्ण ने इतना भगाया माता को, इतना भगाया कि दोपहर हो गई। तो बंधन दोपहर में हुआ। आप सोच लीजिए 4-5 घंटा, और माता यशोदा का जो शरीर है वो भारी है, कृष्ण तो छोटा 3 साल का लाला है, वो इधर उधर भाग सकता, और पूरा गली मोहल्ले में सब जगह घुमा घुमा के तब पकड़ में आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनकी जो विभूतियां हैं, उनकी शक्तियां उनको बंधन में डालने नहीं देंगी। तो सारी शक्तियां जब फेल हो गई, या सारी शक्तियां जब बांधने नहीं दे रही थी, भगवान ने जब देखा माता के मुख को कि कितना मेहनत कर रही है, पसीना निकल रहा है, और वो भक्ति से प्रभावित हुए। सब आचार्य कहते हैं कि भगवान के हृदय में सारी शक्तियों की रानी ने जन्म लिया। तो 16 तो अनंत शक्तियां हैं, 16 प्रमुख शक्तियां हैं, उनकी जो रानी है उस शक्ति ने जन्म लिया, और वो शक्ति का नाम है कृपा शक्ति। तो वो कृपा शक्ति से बंध गए, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और दो उंगली वाला है, वो हम चर्चा करेंगे। अब इस लीला में भगवान को भी बहुत सारे शौक मिले। जैसे भगवान आए, सबसे पहले तो उठे, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि 3.25 साल की उम्र हो गई कि वो खुद उठ रहे हैं। यशोदा आके उठाती थी, तो पहला शौक की कोई आया नहीं, माता किधर है, मेरे को छोड़ के किधर चली गई। फिर दूसरा, वो चलो उतर के आ गए, तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था कि यशोदा माता जो है वो पूरा खोई हुई है भगवान की लीला में, और मथ नहीं कर रही, तो देख नहीं रही कृष्ण को। तो फिर कृष्ण ने वो मंथन दंड रोका, और उसको रोक के यशोदा के पास चढ़ के और दूध पीने लगे। फिर दूसरा झटका उतार के, कुछ वार्निंग नहीं, कुछ बोल देती कि लाला अभी मैं आती हूँ 2 मिनट में, कुछ नहीं, उठा के सीधा नीचे रख दिया और चले गए। फिर आगे जब कृष्णा उखल के ऊपर चढ़ गए और मक्खन बांटने लगे और खाने लगे, वहां पे है देख सकते डायरामा में। तो यशोदा का हाथ खाली नहीं है, पहली बार कृष्ण ने डंडा देखा अपने लिए, तो ग्वाले है तो देखा है डंडा, गाय बैल के लिए डंडा देखा है, अपने लिए पहली बार देखा, और वो भी कौन ला रहा है, यशोदा माता। तो शौक पे शौक मिल रहा है, तो वहां से भागना चालू किया। भागते भागते माता भी आज हट करके बैठी है। इसीलिए ये निश्चय जो डिटर्मिनेशन है ये भक्त में बहुत जरूरी है, इससे भगवान मिलते हैं। धैर्य भी था, देखिए उत्साह निश्चय धैर्य तीनों गुण यहाँ पे देखे। धैर्य तो था, चार पांच घंटे तक छोड़ी नहीं, चलो छोड़ दो अब जाने दो क्या करेगा नहीं, और डिटर्मिनेशन था। तो फिर जैसे जैसे पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद डंडा तो फेंक दिया माता ने, क्योंकि तो ज्यादा घबरा गए थे भगवान और रोने लग गए। तो पहली बार, एक तो भगवान रोते नहीं, कभी कभी रोते हैं, तो जब रोए थे जब भी तो यशोदा माता अपना आंचल लेके उनकी आंख पोछती थी। अब पहली बार खुद अपने से अपना हाथ आंख पोछ रहे हैं, ये दामोदर अष्टकम में हम सुनते हैं। अच्छा, पोछने तो आता नहीं है, ज्ञान नहीं है इस चीज का, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो पूरा हाथ से वो काजल पूरा फैल गया आंखों से। और इसके बाद तो हद हो गई, बांध ही दिया। अभी छोटे बच्चों को बंधन पसंद नहीं है, बंधन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जो इस उम्र के बालक होते हैं उनको थोड़ा भी देर के लिए कहीं बैठने बोल दो नहीं बैठ सकते, तो उनको कुछ खिलौना देना है, खाने के लिए देना है, बैठ नहीं सकते। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज जब ये कथा बताते हैं तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, एक प्रसंग बताते हैं कि एक घर में, एक ये सच की घटना है, एक घर में कुछ शादी सगाई कुछ तो था, फंक्शन था, तो बच्चे उत्पात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे हो गए। तो किसी ने बोला ये बच्चे बहुत उत्पात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो इनको सबको एक रूम में बंद कर दो। तो रूम खोला, एक रूम में सब बच्चों को डाल दिया, बाहर से ताला लगा दिया। और उसके बाद तो क्योंकि ये बंधन में आ गए और यूनिटी भी हो गया, इतना जोर जोर से उत्पात करने लगे, इतना चिल्लाने और रोने लगे, इतना आवाज हो गया कि घर वाले बोले जल्दी खोलो नहीं तो आसपास से कोई पुलिस आ जाएगा। तो बच्चों को कोई बंधन पसंद नहीं। अभी देख रहा था मैं वहां पे दीपदान करके, वहां विश्वंभर वासुदेव प्रभु से बात कर रहा था तो दामोदर आ रहा था, और ऐसा भागते आता है वो कुछ नहीं देखता है किसके साथ आया है ना, माता जी पिताजी पीछे से चल रहे हैं भागते भागते, वो भागते रहेगा पूरे मंदिर में, वो रुक नहीं सकता। तो उनको बांध दिया, खेलने नहीं मिल रहा है। तो ये सब हो रहा है तो भगवान भी थोड़े से, ये तो चाहते थे भगवान, तो ये लीला का आनंद भगवान भी ले रहे हैं और अन्य गोपियां भी ले रहे हैं जो आगे आएगा, क्योंकि गोपियां हंसती हैं यशोदा के ऊपर कि देखो रानी है, एक छोटे से बालक को बांध नहीं पा रही है, और बांध ही नहीं रहे, दो उंगली कम पड़ जा रहा है रस्सी का, तो ज्यादा परेशानी होती है। शारीरिक परेशानी तो हुआ कि चार पांच घंटा दौड़ाया, लेकिन शारीरिक जो है थकान हम फिर भी मिटा सकते हैं, थोड़ी देर बैठ गए। जो मानसिक थकान होता है वो ज्यादा परेशान करता है। जय श्री राधा राज की, हरि भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, किसी गौर नेताए की। तो जो मेंटल प्रेशर होता है आजकल जो हम देख रहे हैं इस जनरेशन में, समाज में मेंटल प्रेशर ज्यादा है, अब वो प्रेशर आ रहा था, क्योंकि छटाक भर की तो कमर है, तीन साल के बच्चे का कितना कमर होगा, इतना वो बंध नहीं रहा है। सबसे पहला रस्सी कहां से निकाला माता ने, अपने बाल से, वो रेशम की डोर बांधी हुई थी छोटी में, उसको निकाला कि तो इसी से बन जाएगा, और वो भी आधा एक मीटर होगी, बंद ही नहीं रहा। अच्छा एक और जोड़ो, एक और जोड़ो, एक और जोड़ो, एक और जोड़ो, तो कोई भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप कुछ कार्य कर रहे हैं, हो नहीं रहा, कार्य कर रहे हो नहीं, और दिख रहा है कि इतना सा है, ऐसा नहीं कि स्पेस बढ़ रहा है, भगवान का शरीर बढ़ रहा है, कुछ नहीं उतना ही है, लेकिन बंधन में नहीं आ रहा। ये बहुत एंग्जाइटी में डाल दिया मत, लेकिन निश्चय था। आज तो माता हट करके बैठी थी कि कुछ भी हो जाए इसको बांधे बिना छोड़ूंगे। माँ का भाव था कि अभी इसको थोड़ा डर गया है, ये डर गया है तो इसको अभी अभी मनाना अच्छा नहीं है, थोड़ी देर इसको बांध देती हूँ और इसके लिए अच्छा मक्खन बना के इसको खिला दूंगी, मना लूंगी। अगर खुला छोड़ दूंगी तो भाग जाएगा, मोहल्ले में कोई जानवर मार देगा। तो ये भाव से माता ने बांधा। अब यहाँ पे दो उंगली का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दर्शाया गया है, तो ये क्या है दो उंगली? पहली उंगली क्या है? पहली उंगली कृपा नहीं, पहला प्रयास, दूसरी उंगली है कृपा। तो अगर ये दो उंगली है, एक कृपा, एक प्रयास है, एक कृपा है, हमारे हाथ में क्या है? प्रयास है। लेकिन हम कहां गड़बड़ा जाते हैं, हम कृपा पे फोकस कर लेते हैं और प्रयास को छोड़ देते हैं। तो वी कैन नॉट डिमांड, हम लोग कृष्ण से कृपा को छीन नहीं सकते या जबरदस्ती डिमांड नहीं कर सकते। और यहां पे वही प्रभुपाद जी बोल रहे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो कृपा भी नहीं करेंगे। पूर्ण स्वराट है ना, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा भगवान के ऊपर। क्यों है वो ऐसा? उनका प्रकृति है, क्या करेंगे, भगवान ऐसे ही है, उनका स्वभाव है। तो थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार साधक भी जो है वो मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ये चीज को लेके कि हो क्यों नहीं रहा है। मैं 5 साल से जप करने का प्रयास कर रहा हूं, अभी भी नींद आ रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना अनर्थ आ रहा है इतने सालों भक्ति करने के बाद भी। तो हम कहां फोकस करते हैं? रिजल्ट पे फोकस करते हैं। अब भगवत गीता में भगवान ने किस चीज पे फोकस करने को बोला है? रिजल्ट पे तो नहीं बोला, किस चीज पे फोकस करने बोला? अपने कर्म और अपने धर्म पे। आप अपने कर्म को ही अपने हाथ में रख सकते हो, उसी पे आप फोकस कर सकते हो, रिजल्ट पे तो नहीं कर सकते। और सारे शास्त्रों में आप कहीं खोल लो, तो कल ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे थे कुछ शिष्यों, कुछ स्टूडेंट थे तो उनके साथ डिस्कशन हुआ, ऐसा श्लोक आया, मैं बोला ये तो क्लास के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे स्कंद में विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, और प्रश्न करते हुए भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, लीला श्रवण का, लीला का नहीं, भगवान के कथा श्रवण से क्या मिलता है उसका गुणगान यहाँ पे विदुर जी करते हैं। सश्रद्धा धान सविवर्धमान विरक्त मन्यत्र विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसम, कहते हैं स श्रद्धा धानस्य, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः ग्रेजुअली अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? श्रद्धा धानस्य, जो श्रद्धावान भक्त है, अगर इसको एक इक्वेशन बना के समझा जाए तो बहुत आसान है। एक श्रद्धावान भक्त है, यहाँ पे जो भी हैं सब श्रद्धावान है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठे होते हम। एक माला भी जप कर रहा है तो उसके अंदर श्रद्धा है, वो मान रहा है कि भगवान है और भगवान कृष्ण है, तभी तो कृष्ण का नाम जप कर रहा है। तो श्रद्धावान भक्त जब कृष्ण कथा सुनता है, श्रद्धावान भक्त कृष्ण कथा सुनता है तो क्या होता है? हृदय अंतस्य अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र है वो खत्म हो जाता है। ये हम सुनते हैं पहले स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थना में, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ा जो दूसरी उंगली है कि श्रद्धावान भक्त जब भगवान कृष्ण की कथा सुनता है तो क्या होता है? कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और कृष्ण की कृपा ही हृदय को शुद्ध करती है। हम नहीं करते, हम हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता के दशम स्कंद के इस श्लोक को बार बार अपने लेक्चर में दोहराते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतम प्रीति पूर्वकम। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा काम कितना है, एक लेक्चर में बोलते हैं आप अपना काम करिए, जितना आपको करना है और कुछ सेवा भगवान के लिए छोड़ दीजिए। तेषाम सता इसका ना भजतम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम इसमें भी कहा भगवान से प्रेम करो। कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं आके हाथ जोड़ते हैं, अच्छी बात है, आंख बंद कर लेते, आंख खोल के देखो, इतना सुंदर भगवान का विग्रह, इतना सुंदर रूप है, तब तो प्रेम जागृत होगा। तो बहुत सारे लोग इस संसार में भगवान को बहुत दूर मानते हैं अपने से, तो प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, तो प्रेम कैसे होगा। तो छह चीजें रूप गोस्वामी ने बताई, ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यम आख्याति प्रस्थिति भुंगते भोंजायते चैव। ये वैष्णव के साथ भी है, भगवान के साथ भी है। भगवान को कुछ दीजिए, भगवान आपको कुछ देंगे। भगवान के सामने अपने हृदय को व्यक्त करो। तो ये प्रेम तब उत्पन्न होगा। तो ये हम कर सकते हैं, फिर क्या होगा, ये न माम उपयंती थे ददामी बुद्धि योगम तम, ये न माम उपयंती थे। ये कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे ददामी बुद्धि योगम तम, ये मैं दूंगा बुद्धि जिससे आप मेरे पास आ सकते हैं। वो हम छीन नहीं सकते, भगवान के जेब में हाथ डाल के नहीं निकाल सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते, अपनी साधना कर सकते। अगले श्लोक में क्या कहते, तेषाम एव अनुकम्पार्थम अहम् अज्ञान जमतमः, कि जब आप प्रेम पूर्वक भक्ति करोगे तो मैं क्या करूंगा, अब सुनो, तेषाम एव अनुकम्पार्थम मैं अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से, अहम मैं अज्ञान जमतमः, आपके हृदय में जो अज्ञानता है उसको खत्म करूंगा। ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान के दीप से। तो कई बार क्या होता है, हम लोग साधना करते हैं और साधना मंथन के जैसा है, तो जब समुद्र मंथन होगा तो विषय तो निकलेगा। वो तो समुद्र का मंथन हो रहा था तो उसमें से थोड़ा सा विषय निकला, वो भी पूरा घेर लिया था ब्रह्मांड को। हमारा तो हृदय बना ही विषय से, विष से है। जो हृदय में सिर्फ विष भर के रखा है हमने इतने जन्मों से, वो जब मंथन होगा तो क्या निकलेगा, विष ही निकलेगा ना। कोई आता है स्टूडेंट, प्रभु जी बहुत काम क्रोध हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मतलब बहुत नहीं है, ये तो थोड़ा है, बहुत अंदर है अभी तो, अभी तो बहुत अंदर है। अभी तुम जैसे जैसे मथनी करेगा वो ये बाहर आना चालू होगा। तो इसमें क्या होता है, साधक डिस्टर्ब हो जाता है, और ये माया का ये तरीका है हमको डिस्टर्ब करने का और भगाने का कृष्ण से दूर। माया ऐसे अटैक करेगी, देखो कुछ हो नहीं रहा है, कितना साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी जप में सोता है, ये माया का भाव है, और अभी भी अनर्थ है ना, क्रोध आता है, महाप्रसाद थोड़ा कम मिला तो क्रोध आ गया, क्या भक्ति किया तुमने 3 साल, तो ऐसा विचार आएगा। फिर क्या बोलेंगे, फिर धीरे धीरे अगर हमने अपना थोड़ा भी ध्यान लगा दिया, पहले तो हम डिस्टर्ब हो जाते, डिस्टर्ब नहीं हुआ और ध्यान लगा दिया उधर, एक स्टेप आगे चले गए, फिर माया बोलेगी देखो तुम मेरा संसार छोड़ के गया, इधर कुछ मिला नहीं, मेरा दरवाजा अभी भी खुला है, वापस आ जाओ, कुछ तो मिलेगा, इधर तो भगवान नहीं मिले ना। चलो बाहर भगवान नहीं मिले थे, आनंद तो मिला था, भौतिक आनंद तो था, इधर तो ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है, दुविधा में दोनों गए, ना राम मिले ना माया, फंस जाता है। तो ये माया हमको ऐसे आइडिया देती है और इसीलिए साधक फंस जाता। तो सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि हम पेशेंट हैं, मतलब हम बीमार हैं, क्या दिक्कत है। अभी आप डॉक्टर के सामने बोल रहे हो कि मैं बीमार नहीं हूं, तो कोई फायदा नहीं ना। कई बार कुछ कोई मरीज होता है, उसको ज्यादा कोई बड़ी बीमारी होती है तो डॉक्टर उसको डायरेक्टली नहीं बताता, बोलता आप किसी को लेके आइए, है ना, नहीं तो घबरा जाएगा। लेकिन हमको तो पता है ना शास्त्र पढ़ के कि हमारे हृदय में क्या है, शास्त्रों ने खुला बोला है। हम क्या सोचते हैं कि मैं अभी 16 माला करते मेरे को 15 दिन हो गया है तो मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, अब 16वें दिन पे जब मैं जप कर रहा हूं तो अनर्थ आ रहा है, ये किधर से आया हम सोचते हैं। शुद्ध हुए कहां है अभी? क्योंकि भगवान की थोड़ी कृपा मिलती है जब नया नया हम जप करना चालू करते हैं तो एक रस मिलता है, और हम सोचते हैं कि बस भाव का लेवल अभी क्रॉस हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई साधक नहीं जो आया। क्योंकि क्या होता है, हम जब एंट्री लेते हैं तो नामाभास लेवल पे आते हैं, क्योंकि अभी तक तो अपराध किया नहीं ना, नाम अपराध। जब बाहर वाला नाम अपराध क्या करेगा, तो आया है नामाभास लेवल पे, तो नाम में रस दे। और भगवान भी जैसे नारद मुनि को दिया था दर्शन, तो हमको ऐसा थोड़ा रस दे देते हैं और हम सोचते हैं हम शुद्ध हो गए, और फिर अंदर रहते रहते वापस ये सबका स्टेज ऐसे होता है, वापस अपराध करना चालू करते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध हो गए हैं और 5 साल 10 साल उसमें गए, एक जन्म दो, करोड़ों जन्म माया को दिया, कृष्ण को एक जन्म तो दे दो। लेकिन नहीं, हमको रिजल्ट में फोकस है, मैं कितना एडवांस कर रहा हूं, अभी मैंने कितना एडवांस किया, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 10 साल में, वो तो आपका काम नहीं है ना सोचना। आपका काम क्या है, तेषाम एवानु का तेषाम सततदेवतानां भजतम प्रीति पूर्वकम, आपका यही काम है। और इसी में साधक मेंटली डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्बेंस क्या करता है, उसका और साधना को खराब करता है। अब यहां पे बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी चीज को समझाते हुए। अब 4 स्टेप में समझा रहे हैं। श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धावान भक्त है वही भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। ये तो हो गया कि कौन कर सकता है, श्रद्धावान भक्त क्या कर सकता है, एंड रिजल्ट बता दिया जाता है शास्त्रों में कि भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि क्यों प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करेगा, भगवान के द्वारा प्राप्त करेगा। और ये आनंद जब भगवान से आएगा तो क्या करेगा, तो क्या होगा, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। जब हम साधना करते 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 भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तब ये संसार के भौतिक कष्ट खत्म होंगे। कौन करेगा, भगवान करेंगे। और हम प्रयास क्या करते हैं कि कैसे मेरे जीवन के कष्ट कम होते जाएं। जैसे कोई हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि वो कष्ट में है तो उसका ध्यान हमेशा वही रहता है कि कैसे कष्ट कम हो। लेकिन कष्ट कम होने का क्या है मेथड, दवाई लो। आप दवाई नहीं ले रहे, सोचते रह रहा है कि कष्ट कम होगा कम होगा कम होगा। डॉक्टर ने जो बोला है दिन में 4 बार दवाई लेना, आपने 2 बार भूल गए, फिर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई स्टूडेंट आते हैं, सब जी लस्ट इज डिस्टर्बिंग, एंगर इज डिस्टर्बिंग, तो क्या बड़ी बात है, ये तो हमारे जो हृदय में है वो है, उसके साथ इतने जन्मों से जिए हैं, अब वो तो शुद्ध हो रहा है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और निकलते निकलते भगवान आपको दर्शन दिखा रहे हैं, ये देखो ये है हृदय में। इससे क्या होना चाहिए, इससे नम्रता आनी चाहिए, न कि शोक में आना चाहिए हमें। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड लेमेंटेशन। नम्रता और शोक जो है वो फर्क है। नम्र व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है कि देखो मेरे हृदय में इतना काम है, मैं दूसरे का हृदय क्या देखूं, दूसरे के दोष को क्या देखना, मेरा हृदय देखो। और यही आचार्य ने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, जब आपके हृदय में मन में ये भावना आ रही है कि दूसरों का दोष देखने का, तो अपने हृदय को देखो, तो इससे नम्र होना है। इसके काफी हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं, और सबसे प्रमुख हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर और वैश्या, जो लक्ष्य हीरा वैश्या आती है। अब देखिए हरिदास ठाकुर वहां पे कैसे डीलिंग करते हैं। तो एक साधक, हरिदास ठाकुर उत्तम वैष्णव है, लेकिन हमको क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, जब हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे हैं, वो वैश्या आई क्या बोला हरिदास ठाकुर ने? आंख बंद कर लिया। नहीं नहीं माया आ गई, माया देवी आ गई, बंद कर लिया आंख, घबरा गए, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे हम नकल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाए और हम भी बैठ जाएं। हमको भागना चाहिए, हमको पलायन कर देना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या दिखा रहे? आप देखो, हमारा माइंड ऐसे होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं हुए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने धर्म पे फोकस किया। उनका धर्म क्या था? 300,000 नाम जप करना। तो उनका फोकस कहां होना चाहिए? नाम जप करना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उससे, वैश्या से? क्या कहा कि मैंने वचन दिया है भगवान को कि मैं रोज 300,000 नाम जप करूंगा, तो मेरा अभी 300,000 नाम जप नहीं हुआ है, तुम बैठ जाओ, जैसे ही नाम जप हो जाएगा तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब इसी को हम अपने जीवन में उतारते हैं। हम बैठते हैं जप करने 2 घंटे के लिए, तो जब जप करने बैठते हैं तो क्या होता है? तुरंत विचार आना चालू होता है। आप पंचतत्व मंत्र बोलेंगे नहीं, विचार पहले आ जाएंगे। और कैसे विचार आएंगे? ये करना है, वो करना है, आज इसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आज यहाँ पे टीचिंग करने जाना है, आज ये प्रोग्राम करना है, पहले ये विचार आएंगे, फिर धीरे धीरे भौतिक विचार आएंगे। सारे ही भौतिक हैं, सारे ही माया के विचार हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? ओहो विचार आ रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, चलना चालू करते हैं, सर हिलाते हैं, अलग अलग आसन करने लगते हैं, जपा छोड़ के बाकी पूरे आसन चल रहे हैं आप, जपा नहीं होता। जप का क्या टेक्निक है? चुपचाप बैठो, महामंत्र जप करो और सुनते रहो, बस उसे हृदय शुद्ध होगा। लेकिन माया का काम क्या है? जप जो है कान में जाना नहीं चाहिए, इसलिए 16 माला हो जाता है, फिर भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कान में कुछ गया नहीं ना। आपने 16 माला तो किया, लेकिन अगर जब सुना नहीं है, श्रवण नहीं हुआ, तो हृदय में शुद्ध नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो डिस्टर्ब रहेंगे। बोलिए, अभी अभी 16 माला किया, ऐसा लग नहीं रहा कुछ हुआ, और 16 माला करने के बाद ऐसे उदासीन बैठे हैं, कोई उत्साह ही नहीं है, क्योंकि वो गया नहीं ना मंत्र अंदर। तो हरिदास ठाकुर से हमें सीखना चाहिए, विचार आता है डिस्टर्ब क्यों होने का, बैठो अभी मैं जप कर लेता हूं, पहले कोई भी कुछ भी आ जाए जप कर लेता हूं, बाद में देखेंगे। आप देखोगे जैसे आपका 16 माला खत्म होगा विचार भाग चुका होगा। 300,000 नाम खत्म होने से पहले वैसे चली गई ना। और तीनों दिन पे क्या किया हरिदास ठाकुर ने? तुम बैठो। वही बोले तुम जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, या दरवाजा बंद कर लिए, पता नहीं कुटीर में दरवाजा था कि नहीं था। वो बोले तुम बैठो, मैं पहले अपना कर्म करूंगा, अपना धर्म करूंगा, फिर तुमको अटेंड करूंगा। तो हमारे भी मन में जो विचार आते हैं नेगेटिव, तो हमको बोलना चाहिए मेरा अभी सेवा का टाइम है, मेरा अभी भागवत श्रवण का टाइम है, भागवत पढ़ने का टाइम है, जप का टाइम है, अभी डिस्टर्ब मत करो। हम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज है हमारे लिए। जब हमको सोना होता है और मन नेगेटिव विचार देता है, मन को क्या बोलते हैं? अभी सोने दो यार, और सो जाते हैं। सोते समय हम कुछ नहीं देखते ना, सब कुछ छोड़ देते हैं, नींद और दूसरा प्रसाद। प्रसाद के समय किसी को नेगेटिव ख्याल आता है? आना ही नहीं देते हम, ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास जगह है, पूरा भर लेते हैं शरीर को प्रसाद से। तो वही काम हम जप में नहीं कर पाते हैं। लेकिन इससे भी एक साधक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना धर्म करते रहना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर ने किया। और हरिदास ठाकुर का रक्षा किसने किया? प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं कि शिव ब्रह्मा भी इस माया के वशीभूत हो गए। भगवान ने दिखा दिया कि आप शिव हो चाहे ब्रह्मा हो, नहीं जीत सकते। लेकिन अगर एक छोटा साधक भी है, सिंसियर है, वो जीत जाएगा। नहीं तो शिव जी भी नहीं जीत पाएंगे माया को, ये प्रभुपाद जी बताते। और रक्षा हुआ उनका। तो हम अगर अपना बैठ के साधना करेंगे, जो भी हमारा काम है, हमारा साधना है, हमारा सेवा है, हम वो करते रहेंगे, अपने आप देखेंगे रिजल्ट आएगा। थोड़ा धैर्य नहीं है, वो धैर्य की आवश्यकता है। उत्साह है, वो शुरुआत में जो उत्साह आता है उस उत्साह से स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन धैर्य नहीं होने की वजह से उत्साह कम होता जाता है। आप देखिए दूसरे उदाहरण भागवतम में आते हैं, जड़ भरत, या अभी वो अम्बरीश महाराज। जड़ भरत ने क्या किया जब उनको डकैत ने पकड़ लिया था? कुछ भी किया, भगवान को प्रार्थना तक नहीं किए। कई भक्तों का विचार होता है कि कुछ भक्त बोल रहे थे नहीं नहीं हम ऐसा परिस्थिति में तो हम क्या करेंगे। ये सब डिस्कशन स्पेकुलेशन होता है, ये सब स्पेकुलेशन है। दो भक्त डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम होंगे तो जड़ भरत जैसा चुपचाप खड़े रहेंगे कि भगवान को प्रार्थना करेंगे? तो कोई बोलता है नहीं नहीं हमको करते रहना चाहिए अपना, भगवान देख लेंगे। ये सब स्पेकुलेटिव डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि जितना आपका चेतना है आप उतना ही कर पाओगे। कभी ऐसा मन में आया हरिदास ठाकुर 300,000 नाम जप करते हैं एक ध्यान करके, चलो करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारा चेतना जितना है उतना ही हम कर पाएंगे। तो जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो अगर आपका चेतना जितना है उतना आप कार्य करोगे, चाहे भगवान को पुकारो और बहुत ज्यादा शुद्ध हो तो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन जड़ भरत ने सिखाया कि हम अपना काम करें। अम्बरीश महाराज, अभी अभी हमने सुना दुर्वास मुनि ने वो दैत्य प्रकट किया, अम्बरीश महाराज ने कुछ किया? किसने रक्षा किया? सुदर्शन आए, भगवान ने सुदर्शन को भेजा। तो इससे हम समझ सकते हैं जो एक उंगली है उसी पे फोकस करो, दूसरी की आशा करो, आशा मत छोड़ो। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं शुद्ध भक्तों के 9 लक्षण। उसमें एक लक्षण बताया जाता है आशाबद्ध। आशा कभी नहीं खोता है वो भक्त। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, होप अगेंस्ट होप, इतना आशा होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन पहली उंगली को छोड़ के और सिर्फ कृपा की आशा करेंगे तो बैठे रहो। जो व्यक्ति भीख मांगता है कई बार ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी एक कटोरा तो रख के बड़ा रहता है ना, उसको देख, उसका रूप देख के चलो किसी को कृपा आ जाएगी। कुछ तो करते हैं, गोवर्धन में तो दवाई लगा लेते हैं, ऐसा लगता है पैर जल गया है, वो दवाई लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो हम अपना एक उंगली जो साधक को साधना करना है उस पे पूरा फोकस करें और ये आशा करें कि भगवान जो है कृपा करेंगे, क्योंकि आशा छोड़ दिए तो फिर नहीं होगा। यशोदा माता ने क्या किया, अपना मेहनत किया, लेकिन ये आशा थी कि इसको बांधूंगी आज, और सक्सेस हुआ। तो हमको इसमें डिस्टर्ब होने का कोई मतलब ही नहीं। कि बहुत सारे साधक पूछते हैं प्रश्न, प्रभु जी ऐसा हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अपना काम करो। डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि जो साधना है वो भी हम नहीं कर पाते। किसी के ऊपर लोन है 10,00,000 रुपए का, तो हमेशा रोते रहेंगे तो कैसे उतारेंगे लोन को, कैसे चुकाएंगे बैंक को? तो क्या करो, मेहनत करो, 6 महीने में 50,000-1,00,000 कुछ तो चुकेगा। तो हमारे हृदय में मेरु पर्वत से ज्यादा अनर्थ भरे पड़े हैं। जैसे कुछ भक्त आप देखेंगे, प्रभु जी मुझसे बहुत अपराध हो रहे हैं, ठीक है तो क्या करें? अभी अपराध तो बंद होगा नहीं, क्यों नहीं बंद होगा, चेतना विकसित नहीं है। तो लीवर कहाँ है, चेतना। आप गाड़ी चलाते हैं, आपको गाड़ी स्पीड करना है, कैसे करोगे? गाड़ी से उतर के धक्का दोगे? तो जी गाड़ी से उतर के गाड़ी को धक्का दूंगा तो गाड़ी स्पीड चलेगा, आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटर दबाएंगे। तो लीवर क्या है, एक्सेलरेटर है। बहुत अनर्थ है, बहुत अपराध है, वो तो एक रिजल्ट है ना, उसको आप क्या कर सकते, वो भी भूतपूर्व रिजल्ट है। पिछले कर्मों का रिजल्ट आ रहा है। और प्रभुपाद क्या बोलते हैं? सहनशीलता। यहां पे सिर्फ एक ही काम है, टॉलरेंस। क्योंकि जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि कौन सा श्लोक है, 13 नंबर दूसरे अध्याय का वो फेमस श्लोक, उसके पहले नहीं, उसके पहले वाला, अरे दहिनोऽस्मिन् यथा देहे, तो वो श्लोक में क्या बोले भगवान कि देखो ये भीष्म है और कौन थे दूसरे उनके गुरु, द्रोणाचार्य, ये दोनों के सामने ही, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, इन दोनों के सामने ही रथ लाए भगवान, और कहीं भी ले जा सकते तो दुर्योधन के सामने ले जाते, दुशासन को ले जाते, दुशासन के सामने जिसने द्रौपदी के बाल पकड़े थे अर्जुन वहीं काट देता, पता है कहां अर्जुन कमजोर पड़ेगा। तो भगवान बोले देखो ये तो इनका शरीर नहीं है ना, ये तो देही है, देह नहीं है, देह खत्म करो। तो अर्जुन मानो बोलता है, आचार्य कहते हैं कि ठीक है ये देह बूढ़ा है भीष्म का, ये देह नहीं है, खुद देही है, लेकिन मुझे तो इस देह में आसक्ति है ना, क्योंकि इस देह ने मुझे परवरिश किया है ना। तब भगवान बोलते हैं ताम तितिक्षुस्तु भारत, अर्जुन फिर तो तुमको सहना ही एक उपाय है कि कर्म तो करना पड़ेगा सहते हुए, तो हमारे भी अनर्थ हैं, निकलेंगे बाहर, अपराध हो रहे हैं, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना 10वें स्कंद के तत्ते अनुकंपान सुसमेक्ष मानव, कि सहते हुए, उसका आप तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं जो सहते हुए क्या सहरा है, सारे दुखों को। ये दुख कहां से आ रहे हैं? हमारे भूतपूर्व कर्म जो हमने किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को सहते हुए, रो नहीं रहा है, सहते हुए विदधान नमस्ते भगवान को प्रणाम करता है, मतलब अपना साधना नहीं छोड़, तब वो मुक्ति का अधिकारी बनेगा। तो दो चीज नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा ना। अब अनर्थ आ रहे हैं, अपराध आ रहे हैं, हमारे जीवन में पिछले कर्मों का रिजल्ट आ रहा है, कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। अरे आपने 10 साल से भागवतम पढ़ा, अभी भी यही पूछते हो कि मैंने क्या किया? किया होगा तभी ना भगवान भेज रहे हैं रिजल्ट। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भागवत क्या, फिर भागवतम पढ़ा हमने, हमारा ही कर्म है ना, नहीं तो भगवान ऐसे देंगे, दूसरे का कर्म तो भगवान आपको देंगे नहीं, इतना तो विश्वास है ना। नहीं, हो सकता है भगवान के कंप्यूटर में वायरस लग गया हो, गलती से मेरे अंदर लोन दूसरे का मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, उनका कंप्यूटर वायरस फ्री है। तो सहना है, और सहते हुए छोड़ नहीं देना है, ठीक है पड़े हैं, सो रहे हैं सवेरे 10 बजे तक, फिर उठते हैं, चलो अभी ये भी सह लेते हैं, महाप्रसाद खा लेते हैं, इसको बहुत सहते हैं हम लोग, क्योंकि पेट नहीं सह पा रहा है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं सहो और खाओ, पेट को सहने के लिए बोलते हैं, कौन बोलता है, जीवा बोलती है, और फिर क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं, सह रहा हूं अपने अपराध जो मैंने किए हैं, भुगत रहा हूं, पड़ा हूं एक कोने में, नहीं वो करते हुए भक्ति करना है, तब मुक्ति पदे सदया भाग, तब मुक्ति के अधिकारी बनेंगे हम लोग। तो डिस्टर्बेंस आएगा, आने दो। अरे एक बैट्समैन है, वो उतरा है बैटिंग करने, और वो बोलता है मेरे को फास्ट बॉलर नहीं चाहिए, मेरे को डर लगता है। वो मेरा मोहल्ले के, मेरा मोहल्ले में ना घर के पीछे एक छोटा लड़का है, उसको बॉलिंग करने के बुलाओ तभी मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो तुम वापस जाओ, तो इधर मत आओ। तो हम डरेंगे, साधना करने से भी डरेंगे, और अपने जो पिछले कर्म है उसको फेस करने से डरेंगे, तो फिर कैसे होगा, नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा, भगवान का एक सिस्टम है, उनका कंप्यूटर में एक फॉर्मूला सेट है कि जो जितना सह सकता है उतना ही दो, उससे थोड़ा डेल्टा ज्यादा उसके शुद्धिकरण के लिए। अगर आप सह सकते हैं 5 किलो अपराध या अनर्थ, तो आपको 5 किलो 100 ग्राम दिया जाएगा, 50 किलो नहीं दिया जाएगा, पता है मर जाएगा, क्यों थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है? वही तो शुद्धिकरण है, स्ट्रेच। मटेरियल लोड में, मैनेजमेंट में ये एक प्रिंसिपल होता है, स्ट्रेचिंग टारगेट, गो एक्स्ट्रा माइल। तो भगवान भी थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, तब तो हम झुकेंगे ना, क्योंकि तो जितना हम सह सकते हैं उतना दिए तो फिर झुकेंगे नहीं, फिर अहंकार आएगा कि मैं डील कर सकता हूं इस चीज से। तो भगवान थोड़ा ज्यादा देते हैं, वजन पड़ता है सर पे तो झुक जाते हैं, तो हमको उतना ही दिया जाए। कोई नहीं बोल सकता मैं तो अभी आया हूं, मैं तो 10 साल से हूं, मैं 20 साल से हूं, 50 साल, आप 100 साल से भक्ति कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, करते रहो। प्रभु जी मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, इतने साल से 16 माला कर रहा हूं, 2 दीक्षा लेके बैठा हूं, तो ठीक है करते रहो, उसको कंटिन्यू रखो, तो भगवान का कृपा मिलेगा, अपने आप उदासीन हो जाओगे। अभी योगी लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी एक लेक्चर बताते, योगी लोग क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, ये करते हैं, नेति नेति सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन हृदय में क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग हैं हरिदास ठाकुर को नकल करते हैं, तो सिक्लूजन, अकेले में जाके निर्जन भजन करूंगा। प्रभुपाद बोले किधर है इस माया के संसार में अकेलापन, माया हर जगह बैठी हुई है, तुम कभी अकेला नहीं, प्रभुपाद बोलते माया तो हर जगह है। तो हरिदास ठाकुर का हम नकल नहीं कर सकते, हमारे हृदय में अभी जो ये काम भावना है तो क्या करे, भक्तों के समाज में रह के उसको क्लीन करो। और योगी लोग तपस्या करने लग जाते, उन लोग क्या कर चाहते हैं, उन लोग चाहते हैं कि हम ये भौतिक कष्ट को खत्म करें। तो अभी भी अहम ममेति है कि मैं करूंगा इस अपने जो भौतिक कष्ट है मेरे जीवन का उसको खत्म करूंगा, किससे, योग के द्वारा। और इसीलिए बोला जाता है ये सब एक काम कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग, ये सब सकल ही अशांत करने वाला है, क्योंकि आपने अपने कंधों पे भार ले लिया। और भक्ति का मार्ग कैसा है, कृपा का मार्ग है। भगवान बोल रहे हैं तुम करो अपना काम, क्लीनिंग मैं करूंगा, अहम अज्ञान जमतमह, क्लियरली तो बोल रहे, चतुर श्लोक की भगवद गीता में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता। प्रभुपाद बोले देखिए व्यासदेव जी ने किसके लिए लिखा महाभारत, तो जिनका चेतना जिनका बुद्धि उतना विकसित नहीं है उनके लिए लिखा गया, तो सबसे निचले वर्ग के उनके लिए महाभारत क्यों गीता सुनाना है। गीता भगवद गीता जो है द्वापर युग के निचले लोगों के लिए लिखा गया, आज कलयुग में सबसे इंटेलिजेंट आदमी दुनिया का भगवद गीता नहीं समझ पा रहा है, अब सोच सकते हैं क्यों, माया अपहृत ज्ञान, माया ने ज्ञान का अपहरण कर दिया। तो इसीलिए हमको ज्ञान का अपहरण नहीं करवा के ज्ञान लेना चाहिए और अपना साधना करना चाहिए। वो एक उंगली पे फोकस करो, दूसरे पे आशा करो, मिलेगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं मिल रहा, एक भक्त बोला प्रभु जी मैं बहुत आसक्त हूं, मैं बोला कितना साल से जप कर रहे हो, बोला 5 साल से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोले प्रभु जी कुछ तो दिख नहीं रहा। तो मैं बोला अभी आप, अभी हमारे साथ वृंदावन यात्रा आया था, मैं बोला अभी दिवाली के कितना दिन छुट्टी मिली तुमको ऑफिस से, बोला 8 दिन, घर कितना दिन गए, बोला 2 दिन, 6 दिन कहां पे थे, आपके साथ था वृंदावन में। तो ये वैराग किधर से आया, 5 साल भक्ति नहीं किए होते तो घर छोड़ के दोस्तों के साथ भले घूमने जाते, घर छोड़ के वृंदावन गांव में बैठते, वो भी सवेरे ठंडी में 4 बजे उठ के भजन करते, ये वैराग नहीं तो क्या है। तो रिजल्ट दिख रहा है, भगवान की कृपा है। हाँ अभी कोई यहाँ पे न्यू भक्त बोलेगा प्रभु जी मेरे अंदर तो वैराग नहीं है, तो ये निकाला है ना, तो थोड़ा वैराग तो हुआ है तभी तो निकाला है, नहीं तो क्यों निकालता, उतना वैराग तो है ना कि घर छोड़ के यहाँ बैठा है। तो ये नेगेटिव थॉट माया से आते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, अरे हो रहा है तभी तो कर रहा है ना, अपना फेवरेट खाना छोड़ के आया होगा, फेवरेट मूवी छोड़ के आया होगा, मूवी स्टार छोड़ के आया होगा, सब तो छोड़ के आया ना, ये भगवान की कृपा है। टाइम हो गया है, किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, एक या दो प्रश्न कुछ मिनट में ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।